पंचदशी के ध्यान दीप प्रकरण का 20वां श्लोक। ब्रह्म यद्यपि शास्त्रेषु प्रत्यपि नैव वर्णितम् महावाक्यै तथाप्येतद् दुर्बोधम् अविचारिणः। ब्रह्म यद्यपि शास्त्रेषु प्रत्यक्त्वेनैव वर्णितम् महावाक्यै तथाप्येतद् दुर्बोधम् अविचारिणः। कहते हैं कि ब्रह्म यद्यपि शास्त्रों में प्रत्यक्त्वेन भी वर्णन किया गया है, वही अंतरात्मा है, फिर भी बड़ा कठिन है। जो शास्त्रों का विचार नहीं करते उनके लिए कठिन है, विचार करने वाले के लिए सुबोध है और अविचार करने वाले के लिए दुर्बोध है। शंका ग्रंथ है अवतरणी का। ननु सत्य ज्ञानादि वाक्य ब्रह्मण सच्चिदानंद रूपत्वम इव तत्त्वमस्यादि वाक्य प्रत्येक रूपत्वमपि तस्बोधते एव। अतः सात जन्यस्यापि ज्ञानस्य प्रत्येक व्यक्ति उल्लेखित्वात् अपरोक्षमेव इत्याशंक्याः। पूर्व पक्षी ने इसके पहले बताया था कि शास्त्र के द्वारा ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान होता है। शास्त्र जो ब्रह्म का लक्षण करता है, सच्चिदानंद आनंदम वै ब्रह्म यतो वायमान भूतानि जातानि जीवन्ति, जो सारे लक्षण है, सारे लक्षण आपको परोक्ष ज्ञान कराते हैं। शास्त्र प्रत्यक्त्वेन उपदेश न करने से अनुभव नहीं होता है, अनुभव उपासना से विचार से होता है। तब पूर्व पक्ष ने यहां शंका किया कि भाई ऐसी बात नहीं, जैसे शास्त्र ब्रह्म का उपदेश करता है वैसे प्रत्यक्त्वेन भी ब्रह्म को बताता है, तो वही प्रत्यगात्मा है, वही अंतरात्मा है। तो फिर शास्त्र के द्वारा उस ब्रह्म का अपरोक्षानुभूति होना चाहिए, फिर क्यों नहीं होता है, ये शंका हुआ। पहले सिद्धांत ने कहा था कि उपनिषद के द्वारा, श्रुति के द्वारा, वेद वेदांत के द्वारा ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप है, आनंदम वही ब्रह्म आनंद स्वरूप ब्रह्म है, अनंतम वही ब्रह्म अनंत ब्रह्म है। ये सारे लक्षण ब्रह्म के परोक्ष रूप से हैं। जब आप उपासना करते हैं तो उसी का आत्मतया अनुभव होता है, स्वात्म रूपेण अनुभव पथ में आता है। तब यहां पूर्व पक्ष कहा कि ऐसी बात नहीं, जैसे शास्त्र बोध कराता है ब्रह्म का वैसे प्रत्यगात्मा रूप से ही बताता है, वही प्रत्यगात्मा बना हुआ है, तो इसका अपरोक्षानुभूति होना चाहिए। सो क्यों नहीं होता है, तो उत्तर दिया कि विचार के अभाव से अपरोक्षानुभव नहीं होता है। जब बार बार विचार करेंगे तो श्रुत पदार्थ का जो आपने जिस ब्रह्म का श्रवण किया है उसी श्रुत पदार्थ का अपरोक्षानुभव होने लगता है। वह देखिए लिख रहे हैं यहां पर कि सत्या सत्य ज्ञानादि वाक्य ब्रह्मण सच्चिदानंद रूपत्वमिव, ब्रह्म जो सच्चिदानंद स्वरूप है उसके समान ही तत्त्वमस्यादि वाक्यों के द्वारा, जैसे कि सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ऐसे ही तत्त्वमस्यादि वाक्यों के द्वारा प्रत्येक रूपता का भी बोधन किया है शास्त्र ने। प्रत्येक रूपत्वम भी तस्कार्थ ब्रह्मण, उस ब्रह्म का प्रत्यक रूपता भी बताया गया है। अतः इसलिए शास्त्र जन्य श्यापी ज्ञानस्य, शास्त्र जन्य जो ज्ञान है उस ज्ञान का प्रत्येक व्यक्ति रूप से उल्लेख होने से, कथन होने से अपरोक्षा अप्रोक्षमेव परोक्ष होना चाहिए। ऐसी आशंका होने पर विश्वास लोग पढ़ते हैं कि भाई ब्रह्म यद्यपि शास्त्रेषु प्रत्यक्तेन वर्णितम्, शास्त्रों में ब्रह्म का प्रत्यगात्मा रूप से भी उपदेश किया गया है, कैसे तो महावाक्य के द्वारा तत्व मसी ब्रह्मास्मि अयमात्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म, ये जो चार महावाक्य हैं, इन चार महावाक्यों से प्रत्यक्ष रूप से वर्णन किया है ब्रह्म का। मतलब कि आपके अंतःकरण में जो मौजूद अंतरात्मा है, जिसको प्रत्यगात्मा कहते हैं, वह भी वही है। एक है दुर्बोधम अविचारिण, पर कहते भाई क्या करे, बेचारा विचार नहीं करता, तो विचार नहीं करने के कारण से दुर्बोध है, बार बार सुनने पर भी ज्ञान हो नहीं पाता। ये बात हम लोगों के लिए बता रहे हैं, दूसरे के लिए हम लोगों के लिए बता रहे हैं, हाँ, कि श्रवण तो खूब किया आपने पर विचार नहीं करते। विचार मतलब जुगालीकरण, बैठ करके दो चार घंटे विचार करना कि भाई ये संसार तो मात्र स्वप्नवत है, अविचारित रमणीय है, काल्पनिक है, क्षणिक है, क्षणभंगुर है, एक आत्मा सत्य है, इसका विचार न होने से दुर्बोध लगता है अविचारिण। यद्यपि वेदांतेषु महावाक्यैर् ब्रह्म प्रत्यगात्मत्वेन उपदिष्टम्, कहते हैं कि वेदांत में महावाक्य के द्वारा ब्रह्म का प्रत्यगात्मा रूप से उपदेश किया गया है। अन्यत्र तो ब्रह्म का सच्चिदानंदत्वेन उपदेश है, ब्रह्म कैसा, सच्चिदानंद है, अखंडैक रस है, अशब्द है, अस्पर्श है, अरूप है, अगंधवच्च है, अनादि अनंत है, अपूर्वम अनपरम, ये सब वर्णन किया है। परंतु महावाक्यों से प्रत्यगात्मा रूप से वर्णन किया गया है। तत्त्वमसि का अर्थ है कि जो वह है वही तू है, प्रत्यगात्मत्वेन उपदिष्टम उपदेश किया। तथापि फिर भी एतत् प्रत्यग रूपत्वम, यह जो प्रत्यग रूप है, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा तत्त्वमस्या तत्त्वम पदार्थ विवेक शून्यस्य, तत्व पदार्थ जो विवेक से शून्य है, जिसने तत् और त्वम पदार्थ का विवेक नहीं किया कि तत् का क्या अर्थ है, त्वम का क्या अर्थ है, ऐसे जो महापुरुष हैं, महामानव हैं, जो विवेक से शून्य हैं, वो महामानव हैं, ऐसे बहुत महामानव हैं, जो अपने को महामानव लिखते, उनको पूछो कि भाई तत्त्वमसी क्या अर्थ है, तत्त्वमसी तो बता नहीं पाएंगे, तत्त्वमसी वही लिख रखे कि तत्व पदार्थ विवेक से शून्य है, उनको दुर्बोध है, मतलब बोधुम अशक्यम। अन्वय वितरे का अर्थ होता है कि आप विचार करेंगे तो बोध होगा, और विचार के अभाव से बोध का अभाव, इसको अन्वय वितरेक बोलते हैं। अतः केवलात वाक्यात न अपरोक्ष ज्ञानम उत्पद्यते इत्यर्थ, इससे क्या सिद्ध हुआ, केवल महावाक्यों के ज्ञान से अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, अपितु विचार करना पड़ता है, निध्यासन करना पड़ेगा। उससे भी नहीं होगा तो उपासना करना पड़ेगा। कौन उपासना? अंग्रह उपासना। अंग्रह उपासना से चित्त एकाग्र होगा तब जाके अनुभव में आएगा। आगे बताएंगे इसी अध्याय में कि भाई आपने अंग्रह उपासना भी किया और अपरोक्षानुभव भी नहीं हुआ, फिर क्या होगा? तब उत्तर दिया कि आपको दंड स्वरूप ब्रह्म लोक मिलेगा। कर्मी और उपासक को तो इनाम मिलता है, ब्रह्मलोक का इनाम। और ब्रह्मलोक में जाने के बाद वहां उनकी मुक्ति नहीं होती है, ब्रह्मलोक में पुण्य कर्मों का उपभोग के बाद छिने पुण्य मर्त लोकम विसंति होगा। पर आपको दंड रूप से ब्रह्मलोक मिलता है। दंड मतलब आपने ठीक से वेदांत का विचार नहीं किया, चिंतन किया तो सही पर ठीक से नहीं किया। तो कहा कि भाई जाओ ब्रह्मलोक, वहां अपनी इच्छा की पूर्ति कर लो। मतलब कि विषया शक्ति दुराग्रह दोष के कारण आपने प्रेमपुरी तो खूब सत्संग सुना, बढ़िया से सुना, 50-60 साल तक सुना, तो इसका आपको इनाम नहीं मिलेगा। इनाम तो है आपकी मुक्ति, दंड रूप से आपको ब्रह्म लोक दिया जाएगा। वहां जाने के बाद आप सिर पर माथा रखेंगे, अरे कहां हाथ पर रखेंगे सिर पर, अरे कहां चक्कर पड़ा, क्योंकि आपने यहां पर श्रवण करने के बाद विषया शक्ति दुराग्रह दोष के कारण विचार नहीं कर पाए। तो वहां पर ब्रह्मा जी के साथ जब विचार करेंगे तो ब्रह्मा के साथ विदेह कैवल्य हो जाएगा। तो दोनों हाथ में लड्डू हो गया ना, दोनों हाथ में। यदि आपने आज समय निकाल कर श्रवण किया, मनन किया तो मुक्ति हो गई तो अच्छी बात, अपरोक्षानुभूति। और नहीं हुई तो आपको ब्रह्मलोक मिलेगा। और वहां पर जब कामना क्षीण हो जाएगी तो ब्रह्मा के साथ मुक्त, ये बता रहे हैं आप। तो बढ़िया, तो दोनों हाथ में लड्डू। और उपासक और क्या बोलते हैं, भक्ति करने वाले द्वैतवादी और कर्मी को मिलेगा ब्रह्मलोक, पर इनाम उन्होंने चूंकि आंग्रह उपासना नहीं किया है, हम ब्रह्मास्मि ऐसा चिंतन नहीं किया है, तो उन्हें कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति हो नहीं सकती है, क्योंकि उन्होंने द्वैत भाव से उपासना किया है। तो दोबारा यहां लौट कर आएंगे, अभी दोबारा वेदांत सुनना पड़ेगा तब जा करके मुक्ति होगी। ये दोनों मंत्र है। आगे देखिए, अतः केवलात वाक्यात न अपरोक्ष ज्ञानम उत्पद्यते इत्यर्थ, केवल महावाक्यों से अपरोक्षानुभूति नहीं होती बल्कि विचार करना पड़ता है। इतना तो है कि परोक्षानुभूति तो हो जाएगी, परोक्ष अनुभव हो जाएगा, परोक्ष मानस अनुभव परोक्ष, कि भाई सच्चिदानंद ब्रह्म वही मैं हूं। स्वात्मा तया अनुभव नहीं होगा, परंतु शास्त्र कह रहा है तो जीव ब्रह्म एक है, अखंड एक रहस्य आनंद स्वरूप, ऐसा अनुभव होगा। ननु सम्यक ज्ञानस्य प्रमाण वस्तु परतंत्रत्वात, या नियम है कि जो सम्यक ज्ञान है वह वस्तु तंत्र है। वस्तु तंत्र ज्ञान होता है और क्रिया पुरुष तंत्र है, ये सिद्धांत है। अब आपकी मर्जी है, इस फूल को आप उठाएं तो नाक से लगाएं या भगवान के चरणों में अर्पण करें, आपको पर निर्भर करता। क्रिया हमेशा पुरुष तंत्रा होती है और ज्ञान वस्तु तंत्र। ये गुलाब का फूल जैसा है वैसा ज्ञान इस वस्तु के अधीन है कि जो गुलाब का फूल है खुशबू वाला है, ताजा है, बढ़िया है, देसी गुलाब है, ये ज्ञान तो वस्तु के अधीन है। तंत्र बोलते अधीन, तंत्र नाम है अधीन, अधीन का कि वस्तु तंत्र मतलब अधीन है ज्ञान, और क्रिया है पुरुष तंत्र। यदि आपके चित्त में बढ़िया संस्कार होगा, सत्संग का संस्कार होगा, तो आप फिर इस फूल को नाग से नहीं लगाएंगे। कहां लगाएंगे? भगवान के चरणों में कि भाई बढ़िया है, निवेदन कर दो, इससे भगवान खुश होंगे। भगवान तो भाई आनंद स्वरूप है, वो खुश नहीं होता, हमारे कोई प्रसन्नता मिलती है। हम लोग कर्मकांड बोलते हैं ना कि अनेन महाकाली महालक्ष्मी महा सरस्वती प्रीत्यर्थे या प्रियंताम न मम, प्रसन्न हो जाए। या बोलते हैं ना भगवत प्रीत्यर्थ सत्कर्म करी से, अरे वो तो आनंद स्वरूप है, वो तो प्रसन्न स्वरूप है, उसके प्रीति अप्रीति नहीं होनी है, वह तो हमारा यंता का शुद्ध होने के बाद प्रसन्न होता है। पर बोलना पड़ता है ऐसा ना, भाई भगवान की प्रसन्नता के लिए ये मैं सत्कर्म अनुष्ठान ये जप ये पाठ कर रहा हूं, बोलते ना। इसलिए बोलते, पता है क्यों बोलते हैं? कि भगवान खुश होगा तो मुंह मांगा देगा। अब भगवान के लिए भगवान को खुश नहीं करते, आप खुश करते कि भगवान खुश रहेंगे मुझ पर तो मुंह मांगा मिलेगा, हमारा कल्याण होगा। तो भगवत प्रत्यर्थ मतलब भगवान अस्मत हमारे ऊपर प्रसन्न, ऐसा करना पड़ेगा, भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो। तो बोल रहे कि या जो कहा गया ननु था ना, प्रमाण वस्तु तंत्रत्वात, जो सम्यक ज्ञान है वो प्रमाण वस्तु के अधीन है। प्रमाणस्य च तत्त्वमस्यादि वाक्य रूपस्य, प्रमाण कैसा? तत्त्वमस्यादि वाक्य रूप है। सद्भावात, सद्भाव होने से वस्तुनश्च ब्रह्मात्मैक लक्षणस्य विद्यमानत्वात्, वह वस्तु क्या है? तो जीव ब्रह्म का ऐक्य, वह विद्यमान है सर्वत्र। कुतो विचारम अंतरेण दुर्बोधम इति आशंक्यः, विचार के अंतरेण का अर्थ बिना, विचार के बिना दुर्बोध आपने कैसे कह दिया? मतलब विचार के अंतरेण, विचार के बिना दुर्बोध कैसे? जब नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, वह विद्यमान है, कण कण मौजूद है, और तत्त्वमस्यादि वाक्य ने बता दिया यही ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म बता दिया, तो फिर दुर्बोध किस बात का? सीधा हम समझ लिए, तब कहते ऐसी बात नहीं है, ऐसा तो कोई भी समझ लेगा, उसका स्वानुभव होना चाहिए, मतलब आनंद स्वरूप की अनुभूति होनी चाहिए। शास्त्र के द्वारा ब्रह्मत्वेन सच्चिदानंदत्वेन तो बोध हो जाता है, पर स्वात्मतया बोध नहीं होता है कि मैं ही ब्रह्म हूं, ऐसा नहीं होता। जैसे मान लो हमने कहा कि ये जो है ना विदेश का बड़ा सुंदर ये घट है, फला मिट्टी से बना हुआ है, बड़ा मजबूत है, इसमें पानी रखो तो वर्षों तक पानी खराब नहीं होता। तो शब्दों से चीज को आपने देख लिया, जान लिया, सामने पड़ा है, पर जब तक खरीद कर घर नहीं लाएंगे तब तक उसका खुद अनुभव नहीं कर पाएंगे। बाजार में दुकान में वस्तु पड़ा है तो श्रावणज या चाक्षुष तो अनुभव हो गया, देख लिया, सुन लिया, पर जब तक घर नहीं लाएंगे खरीद कर तब तक उसका ठीक से अनुभव नहीं होगा। ऐसे ही जब आप श्रद्धा धने न मुनिना मधुसूदन न अद्वैत सिद्धिकार कहते भाई, श्रद्धा रूपी धन के द्वारा जब आप उस पुस्तकीय ज्ञान को खरीद कर अपने हृदय में अनुभव करते हैं तब जाकर अपरोक्षानुभूति होती है। ये बता रहे हैं दुर्बोधम इत्याशंक्या, ऐसा शंका होने पर उत्तर दे रहे देहाद्यात्मत विभ्रांतो जाग्रत्याम न हठात पुनः ब्रह्मात्मत्वेन विज्ञातुम् क्षमते मंदधीत्वतः देहात्मत्व विभ्रांतौ जाग्रत्याम न हठात पुनः ब्रह्मात्मत्वेन विज्ञातुम् क्षमते मंदधीत्वतः। कहते देहाद्यात्मत्व विभ्रांतो, शरीर में आत्मत्व की भ्रांति है, शरीर ही आत्मा है, ये तो थोड़ा बढ़िया है, घटिया नहीं, इतना तो चल जाएगा, उस काल में ऐसा रहा होगा, परंतु ये भी नहीं है। जिस काल में ग्रंथ का प्रणयन हुआ उस काल में लोगों को देह में इंद्रिया में आत्मबुद्धि थी, इसलिए अपने कल्याण के लिए स्वर्ग आदि का साधन करते थे, ज्योतिष्टोम आगे। पर आज तो देह में आत्मा बुद्धि भी नहीं है, देह में क्या बुद्धि मालूम है, आत्मबुद्धि नहीं है, नहीं या क्या बुद्धि है, मैं फला मकान का मालिक, मैं फला का पति, फला की पत्नी है ना, मैं जो है बड़ा भारी नगर सेठ, मैं बड़ा भारी जो है ना महात्मा, बड़ा भारी मैसा वैसा, ये भ्रांति है ना। जब देह में आत्मबुद्धि होगी तो कम से कम आत्मा के कल्याण के लिए आप यज्ञ याग तो करेंगे, दान पुण्य तो करेंगे, पर देह में आत्मबुद्धि नहीं बल्कि औपाधिक बुद्धि, संसारी बुद्धि कि भाई मैं तो फला ही हूं, मतलब उससे चार कदम आगे बढ़ गए, जो था ना चार कदम आगे बढ़ गए। वही बोल रहे कि देहादि में आत्मत्वादि की जो विभ्रांति है, जागृत्याम जब तक वह जीती जागती है, न अठात पुमान ब्रह्मात्म विज्ञा तुम क्षमते, तब तक बुद्धिमान दे व्यक्ति, बुद्धिमान मतलब मंद बुद्धि वाला, अपने को आत्मा रूप से अनुभव नहीं कर सकता। आपने अपने शरीर को ही पहले तो मान लिया आत्मा, इसके बाद क्या कहा भाई मैं तो इतना बड़ा नगर सेठ हूं, मेरा कर्तव्य मेरा धर्म ऐसा करना चाहिए, उलझ गए। आप अपने निज स्वरूप को भुला दिए और भुला करके अन्यान्य धर्मों का आरोप कर लिया, उसी को अपना स्वरूप मान लिया और स्वरूप मानकर उस कार्य में उलझ गए। जैसे मान लो जड़ भरत जी ने अनुभव किया कि भाई आज यदि मैं वेदाध्यन कर लूंगा, गायत्री मंत्र कंठ कर लूंगा, मां मृत्युंजय कंठ कर लूंगा, तो पिताजी बोलेंगे तू पंडित है, जा फला जगह पुरस्कार कर लेना भाई, काल सर्प के लिए मां मृत्युंजय का जप कर लेना, तो सोचे कि इस लफड़ा में पढ़ना ही नहीं, क्योंकि जब भरत महाराज को ज्ञान है यदि मैंने एक भी मंत्र सही रूप से सुना दिया पिताजी को, उनको मंत्र सारे आते थे, ज्ञानी थे, पर मालूम था सुना दिया सही सही, तो दुनिया वाले अपना मतलब निकालने लग जाएंगे कि तुम विद्वान वैसा करो, तुम ऐसा न करो। इसीलिए उन्होंने अपने को सबके समक्ष प्रकट कर दिया कि मैं कुछ जानता ही नहीं। तो दुनिया वाले क्या समझे, तो बेकार है, कोई काम करे, जाने दो इसको, घूमने दो। उनको विवेक है कि मैं तो आत्मा हूं, अजर हूं, अमर हूं, शुद्ध बुद्ध मुक्त हूं, मैं कभी मरता नहीं हूं। सारी भागवत कथा सुनाने के बाद सुखदेव जी ने फटकार कर पूछा और डांटा कि आम मरिष्ये इमाम पशु बुद्धिम जही, मैं मरूंगा तक्षक सांप आएगा डसेगा, मैं मर जाऊंगा, ऐसी पशु बुद्धि तू छोड़ दे। तो हम लोगों की पशु बुद्धि क्या है कि मैं मर जाऊंगा, पशु बुद्धि है ये, मनुष्य बुद्धि नहीं, इसको पशु बुद्धि बोलते हैं, जो मैं मर जाऊंगा। तो देह में जो आत्मत्व की भ्रांति है, जब तक जीती जागती है भ्रांति रहेगी, तब तक आदमी अपने को ब्रह्म रूप से समझ नहीं सकता है। क्यों? बुद्धि मंद होने से, मंद धित्वता, धी बोलते बुद्धि को, मंद बुद्धि होने के कारण से। ब्रह्मात्मैकत्व अपरोक्ष ज्ञान विरोधिनो देहेन्द्रियादिषु आत्मत्व भ्रमस्य विचार निवर्त्यस्य सद्भावात् तन्निवृत्तये विचारो अपेक्षते इत्यर्थ। ब्रह्मात्मैकत्व जो अपरोक्ष ज्ञान है, उसका जो विरोधी, क्या विरोधी है तो कहते देहेन्द्रियादिषु आत्मत्व भ्रम, देह को इंद्रियों को आत्मा मान लेना, या जो भ्रांति है वह विचार से निवर्त है, विचार करने से भ्रांति हट जाती है। विचारों अपेक्षित इत्यादि, इसलिए विचार की अपेक्षा है। और जब तक देहात्म प्रत्यय है तब तक लौकिक मतलब लोकाचार, वैदिक वेदाचार करते रहना चाहिए। ब्रह्म सूत्र के चतुश्रुति शांकर भाष का आखिरी श्लोक है, चार सूत्र है ना, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्मादिश्यत शास्त्र योनित्वात् तत्तु समन्वयात्। इसकी आखिरी भाष्य का आखिरी श्लोक है, देहात्म प्रत्ययो यद्वत् प्रमाणत्वेन कल्पितः तद्वत् देवेदं लौकिकं वैदिकं त्वात्मनिश्चयात्। श्लोक है, जैसे कि देहात प्रत्यय बिल्कुल निश्चित है, प्रत्यय बोलते ज्ञान, मैं ही आत्मा हूं, तो जब तक देह में आत्मबुद्धि है तब तक लौकिक वैदिक ये जो है ना व्यवहार करना चाहिए। आत्मनिश्चयात्, आत्मनिश्चय के पहले पहले। ननु तरही देहेन्द्रियादि गोचरस्य द्वैत भ्रमस्य सद्भावात् अद्वितीय ब्रह्म गोचरम परोक्ष ज्ञानमपि नो विद्यात् इत्याशंक्य। कहते तो फिर देह इंद्रियादि का जो विषय द्वैत ब्रह्म कि सद्भावाकार से विद्यमान होने पर अद्वितीय ब्रह्म विषयक परोक्ष ज्ञान भी नहीं होगा। जब तक शरीर इंद्रिय विषयक द्वैत ब्रह्म बना हुआ है तब तक अद्वितीय ब्रह्म विषयक परोक्ष ज्ञान भी नौ दियात उत्पन्न नहीं होगा। ऐसी आशंका होने पर परोक्ष द्वैत भ्रमस्य परोक्षा अद्वैत ज्ञान विरोधित्वात् श्रद्धावत पुंस शास्त्रात् परोक्ष ज्ञानम उत्पद्यते एवित्याह। कहते परोक्ष द्वैत भ्रम जिसको बना हुआ है उसके लिए परोक्ष अद्वैत ज्ञान जो विरोधी है अविरोधी है, परोक्ष द्वैत भ्रम का परोक्ष अद्वैत ज्ञान अविरोधी है, विरोधी नहीं है, वह विरोधी नहीं है। अविरोधी त्वात श्रद्धावत पुंस, श्रद्धालु जो पुरुष है वह शास्त्रात सात से परोक्ष ज्ञान हो जाएगा, तो कोई विरोधी नहीं है। दोनों का आश्रय अलग अलग है, दोनों का आश्रय अलग अलग है। जो द्वैत भ्रम है वह द्वैत प्रपंच को सत्य कह रहा, और अद्वैत जो ज्ञान है वह क्या कहता है कि अद्वैत आत्मा ही सत्य है। यहां पर उपजीव्य उपजीवक विरोध नहीं होगा, क्योंकि यह जो आश्रय है वह व्यवहारिक जगत का हम जो है ना अपलाप नहीं करते, सत्यत्व का बात करते। व्यवहारिक प्रपंच में सत्यत्व बुद्धि का अद्वैत से केवल बात होता है। जो व्यवहारिक द्वैत है वह तो अद्वैत ज्ञान का साधक है। व्यवहारिक ज्ञान मतलब कि गुरु शिष्य भाव शास्त्रादि जो ये द्वैत है यह तो अद्वैत ज्ञान का साधक है, पर अद्वैत ज्ञान उत्पन्न होने के बाद इसका बात नहीं करेगा, सत्यत्व बुद्धि का बात होता है कि भाई ये जो संसार है उसमें सत्यत्व नहीं है, सत्य आत्मा है। यदि अद्वैत वेदांत व्यवहारिक जगत के सत्यत्व का बात करता तब तो उपजीव्य उपजीवक विरोध खड़ा हो जाता, मतलब जिसके आश्रय से खड़ा हुआ उसी को नाश कर दिया, उसको बोलते उपजीव्य उपजीवक विरोध। उपजीव्य का अर्थ है आश्रय और आश्रयी, दोनों का विरोध नहीं हो सकता है। देखिए ये जो आपका द्वैत व्यवहार है ये तो आपका उपजीवक है, आश्रय है अद्वैत ज्ञान का। गुरु उपदेश करते शिष्य सुनता है, शास्त्र बीच में है तो ज्ञान होता है। तो इसमें जो मौजूद व्यवहारिक सत्य है ना इसका बात हम नहीं करते, हम किसका बात करते पारमार्थिक सत्य। हाँ हाँ आश्रित दो शब्द है, उपजीव्य उपजीवक। उपजीव बोलते हैं जो आश्रय है, हाँ उपजीवक बोलते हैं आश्रय को। उपजीवक मतलब आश्रय देने वाला, उपजीवी मतलब जो आश्रय में है। जैसे मान लो फूल है, फूल बोलेंगे उपजीव्य है, और उपजीवक है टेबल आश्रय में रहता है। तो व्यवहारिक सत्य आपका उपजीवक है, आश्रय किसका अद्वैत ज्ञान का। तो हम यहां जो बात करते व्यवहारिक सत्य का, इसलिए कोई विरोध नहीं है। व्यवहारिक सत्य का बात नहीं करते पारमार्थिक सत्य का, मतलब द्वैत प्रपंच में पारमार्थिक सत्यत्व नहीं है। भ्रांति से द्वैत प्रपंच को हम सत्य मान रहे हैं, जब ज्ञान होगा तो आपका पारमार्थिक सत्य बाध हो जाएगा। तो व्यवहारिक सत्य का शास्त्र बाध नहीं करता, इसलिए कोई विरोध नहीं है। तो आराम से परोक्ष जो द्वैत है ना उसके रहने पर भी परोक्ष ज्ञान हो जाएगा, कोई विरोध नहीं है। लिखा ना परोक्ष द्वैत भ्रमस्य परोक्ष अद्वैत ज्ञान का अविरोधी होने से श्रद्धालु पुरुष को शास्त्रों से परोक्ष ज्ञान हो जाएगा, कोई विरोध नहीं है। आगे देखिए ब्रह्म मात्रम सुविज्ञेयम् श्रद्धालो शास्त्र दर्शिनः अपरोक्ष द्वैत बुद्धिः परोक्षाद्वैत बुद्ध्यनोत् ब्रह्मात्रं सुविज्ञेयम् श्रद्धालो शास्त्रदर्शिनः अपरोक्षद्वैतबुद्धिः परोक्षाद्वैतबुद्ध्यनुत। कहते हैं कि ब्रह्म मात्रम स्विज्ञेयम्, मात्र ब्रह्म ही स्विज्ञेय है। कैसे? श्रद्धालु हो, शास्त्र में निष्ठा हो, अपरोक्ष द्वैत बुद्धि, परोक्ष अद्वैत बुद्धि का अनुत मतलब विरोधी नहीं है। नूत बोलते हैं विरोधी को, नूत धातु जो है ना विरोध अर्थ में आता है, अनुत मतलब अविरोधी है। अपरोक्ष द्वैत बुद्धि यथा परोक्ष अद्वैत बुद्धि अनुतमल अविरोधी है, अतो इसलिए ब्रह्म मात्रम स्विज्ञेयम् इति योजना, ब्रह्म ही स्विज्ञेय है ऐसा मतलब कि आप योजना लगा लेना पंक्ति। अपरोक्ष भ्रमस्य परोक्ष सम्यक ज्ञान अविरोधित्व दृष्टान्तमः। या जो अपरोक्ष भ्रांति है जगत में, वो निशा सब सोवन हारा है ना, विविध प्रकार देखे स्वप्न प्रकार, ये मोह निशा में सो रहा है और क्या कहता है कि मैं जगा हुआ हूं और विविध प्रकार का सपना देख रहा है, वही बोल रहे कि वो उसका विरोधी नहीं अद्वैत का। परोक्ष सम्यक ज्ञान का अविरोधी है, इसमें दृष्टांत से समझा रहे, दृष्टांत से समझ में आ जाएगी ये बात। अपरोक्ष शिला बुद्धिर् न परोक्षे सताम नुदेर् प्रतिमादिषु विष्णुत्वे कोवा विप्रतिपद्यते। अपरोक्ष शिला बुद्धिर् न परोक्षे सताम नुदे प्रतिमादिषु विष्णुत्वे को वा विप्रतिपद्यते। बहुत बढ़िया दृष्टांत दिया। कहा कि भाई जो अपरोक्ष बुद्धि है द्वैत की, वह परोक्ष अद्वैत ज्ञान का विरोधी नहीं। दृष्टांत दिया, सामने आपका ये एक शिलाखंड है, उस शिला को आपने सिंदूर से रंग दिया, सिंदूर लगा दिया, सिंदूर में घी लगाया, रंग दिया और एक नारियल रख दो फूल, जितने आएंगे सब माथा टेक कर जाएंगे। एक बार हमने प्रयोग किया हरिद्वार किनारे, मजाक में दो महात्मा थे, गंगा किनारे बड़ा पत्थर रख दिया और कुछ आ रहे थे लोग, तो हम लोग फूल वूल था माला मुला लपेट दिया, वही पड़ा हुआ था अगरबत्ती जला दी, जो आए सब वैसे करने लग गए, उन्होंने वाह भाई भगवान बन गए। तो है तो पत्थर, अपरोक्ष क्या है? शिला, शिला बोलते पत्थर को, शिला मतलब पत्थर। तो सामने तो एक पत्थर है, शिला है, परंतु उसमें विष्णु या हनुमान बुद्धि में कोई विरोध नहीं। अपरोक्ष द्वैत है पत्थर, आंख से देख रहे हैं सामने पत्थर है, तो अपरोक्ष मतलब प्रत्यक्ष सामने शिला पत्थर है, उसी में विष्णु की बुद्धि हनुमान की बुद्धि हो रही, तो कोई विरोध नहीं, दोनों साथ साथ रह सकते हैं। ऐसे ही द्वैत प्रपंच द्वैत व्यवहार के होने पर भी अद्वैत का परोक्ष ज्ञान हो जाएगा। कैसे? शास्त्रों के द्वारा। किसी ने कह दिया, लिख दिया कि तुझे पता नहीं ये जो पत्थर है ना, ये स्वयंभू महादेव है, जमीन से निकले, आपने विश्वास कर लिया और श्रद्धा हो गई। तो सामने तो पत्थर है, परंतु लोगों के कहने से उसमें परोक्षक ज्ञान हो गया कि ये साक्षात मां देवी है, साक्षात विष्णु भगवान है, साक्षात हनुमान जी। ये ज्ञान आपका परोक्ष है, सामने दिखाई नहीं पड़ रहा, सामने तो पत्थर दिखाई दे रहा, गोल मटोल सिंदूर लगा हुआ है, तो कोई विरोध नहीं। ऐसे ही द्वैत प्रपंच की बने रहने पर भी शास्त्रों से अद्वैत का परोक्षक ज्ञान हो जाएगा, जब विचार करेंगे तब जाकर अपरोक्षानुभव होगा। कोई बता रहे कि अपरोक्ष शीला बुद्धिर न परोक्ष इष्टता अनुदित, परोक्ष ईश्वर की बुद्धि का विरोधी नहीं है। जैसे कि प्रतिमा दिशु विष्णुत्वे, कोई प्रतिमा उसमें आपने विष्णु बुद्धि कर लिया तो उसका कोई विरोध नहीं है, न विप्रतिपदेते, मतलब कोई विरोध नहीं है। विरोधाभावमेव उदाहरित्य दर्शयति प्रतिमा दिशु, विरोधाभाव को यहां पर दिखला रहे कि भाई विरोधा का अभाव है। हाँ, कोई अश्रद्धालु हो उसको भले ही विरोध हो जाएगा, क्या बोलेगा कि सामने दो पत्थर दिख रहा, कैसा लोगों का मगज खराब की इसको भगवान मान रहे। तो देखो, पत्थर को भगवान मानने से अंतःकरण शुद्ध होगा, मन में नम्रता आएगी, शिष्टाचार आएगा, आनंदानुभव होगा। यदि आप पत्थर को पत्थर मानेंगे तो पत्थर का तो कुछ बिगड़ना नहीं, आप उससे लाभ उठा नहीं पाएंगे, है कि नहीं, उससे लाभ नहीं उठा पाएंगे। यदि आप किसी महात्मा को महात्मा न माने तो उसके महात्मापना में कोई क्षति नहीं होगी, आप उससे लाभ नहीं उठा पाएंगे, लाभ से वंचित रह जाएंगे। ऐसे ही पत्थर है, उसमें आपने भगवत बुद्धि किया तो सर झुक जाएगा, हाथ जुड़ जाएगा, तो मन में प्रसन्नता निर्मलता आएगी, आनंद का अनुभव होगा। और वही अकड़ के चलेंगे, अरे क्या पत्थर की लोग पूजा कर रहे, तो अहंकार उदंडता चित्त में जो है ना आएगी, उससे मन में द्वेष बुद्धि उत्पन्न होगा। तो अश्रद्धालु के मन में तो उस प्रतिमा में भले विष्णु बुद्धि न हो, पर श्रद्धालु होगा तो जहां पर द्वैत बुद्धि है, शिला बुद्धि जो प्रत्यक्ष है, वहीं पर वहां पर भगवत बुद्धि हो जाया करती है। ऐसे यहां पर भी शास्त्रों के द्वारा द्वैत प्रपंच के मौजूद रहने पर भी अद्वैत का परोक्ष ज्ञान हो जाता है। जब आप बार बार विचार करते हैं तो श्रुत पदार्थ अद्वैत का अपरोक्षानुभूति होने लगती है। तो थोड़ा विचार करना पड़ेगा, विचार कब तक विचार करे, जब आम का फल पक जाता है तो पकने के बाद अपने आप टपक जाता है, उसको डंडे से मार कर गिराना नहीं पड़ता है। ऐसे जब आपको अपरोक्षानुभव हो जाएगा तो पूछना नहीं पड़ेगा कि मुझे हुआ कि नहीं हुआ। भाई कोई व्यक्ति भोजन कर लिया, किसी से पूछता है कि बताओ मेरा पेट भरा कि नहीं भरा, पेट भर गया ये स्वसंवेद्य स्वानुभव है। ऐसे ही आत्मा अनुभूति अपरोक्षानुभूति हुई कि नहीं हुई, ये संशय का विषय नहीं। संशय हो रहा मतलब नहीं हुई, सीधी बात है। और विश्वास हुआ तो माने हो गया, विश्वासम फल दायकम, इसलिए कहते हैं विश्वास करो कि अहम ब्रह्मास्मि। जैसे आप अपने को मानते हैं ना कि मैं जीव हूं, संसारी हूं, यहां पर अपनी मान्यता का फिल्टरिंग करना, फिल्टर कर लेना कि मैं ब्रह्म हूं, इस मान्यता के बाद जब विचार करेंगे तो परोक्षानुभव हो जाएगा। शेष आपको कल स्वामी जगदीशपुरी जी आएंगे तो अच्छी तरह से समझाएंगे 24वें श्लोक से। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमिदं।
हरि ओम, हर हर महादेव। परम पूज्य स्वामी जी को वंदन। स्वामी जी ने एक महीने तक पंचादशी का ज्ञान दीप तक 23 मंत्र तक पहुंचा दिया। मुख्यतः स्वामी जी ने लक्षा था और इसका साधन भी बड़ा सुंदर रूप से प्रकाश डाला। अपना दो प्रकार का दौर चल रहा है, प्रवृत्ति मार्ग, एक समवादी एक विषमवादी। विषमवादी में कुछ नए हाथ मिलने वाला, तो मुख्यतः अपने साधन में समवादी का प्रवृत्ति या न साधन या न पुरुषार्थ या उपासना करने से ही अपने को राम रतन मिलेगा, ये मुख्यतः इसमें लक्ष्य आता है। वो साधन भी बताया, स्वामी जी को बड़ा कृपा है, प्रति वर्ष कृपा करते हैं और आने वाला वर्ष में भी आएगा। अभी पुनः स्वामी जी को पुनः वंदन करते हुए कृतज्ञ अनु अभिव्यक्त करते हरिओम तत्सत।